समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
हमारे जीवन में संगति का अत्यधिक महत्व है। हम जिस तरह के लोगों में रहेंगे, हमारी प्रकृति भी धीरे धीरे स्वयमेव ही उनके जैसी होती जाएगी। इसीलिए इंसान को चाहिए कि हमेशा उत्तम संगति का ही अनुसरण करे। इस संबंध में हिंदी का एक प्रसिद्ध दोहा भी है कि कदली सीप भुजंग मुख, बूंद एक गुण तीन, जिन जैसी संगत करी तिन तैसो गुण लीन। अर्थात मान्यता है कि जब स्वाति नक्षत्र होता है तो उस समय उसकी दुर्लभ बूंद पृथ्वी पर गिरती है। वो दिव्य बूंद यदि केले के वृक्ष पर गिरे तो वही बूंद कपूर बनकर रह जाती है। इसी तरह अगर वो बूंद सीप में गिरे तो वो अमूल्य मोती बन जाती है, और अगर वही बूंद सांप के मुख में गिरती है तो वही बूंद सर्प के विष का रूप धारण कर लेती है। अर्थात स्वाति बूंद का मूल तो एक ही है, परंतु ये गिरने वाले पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि गिरने के बाद उस बूंद की प्रकृति कैसी होगी। ठीक ऐसे ही इंसानी मन पर भी संगति का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अच्छी संगति में रहें और सभ्य तथा शिक्षित समाज के निर्माण में भागीदारी करें। इन्हीं प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर समाचार सेवा प्रभाग के विशेष समाचार पत्रिका कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस शीतल और सुहावनी प्रभात में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल, और मेरे साथ हैं सुभद्रा रामचंद्रन। सुभद्रा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग मुकेश, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ऑन दिस थर्ड डे ऑफ द न्यू ईयर। सो वी गैदर हियर, यू फोक्स हैव एंजॉयड योरसेल्व्स एंड सेटलिंग डाउन टू योर वर्क शेड्यूल्स राइट नाउ। ऑफ कोर्स यू स्टे विद अस फॉर अ सेशन ऑफ आज सवेरे व्हिच इज अबाउट टू बिगिन फ्रॉम आवर आकाशवाणी स्टूडियोज। मुकेश
जी, और अब नजर डालते हैं श्रोताओं अब तक के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि पिपरहवा अवशेषों का 1898 में पता चला था, और प्रारंभिक बौद्ध धर्म के पुरातात्विक सर्वेक्षण में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। एक रिपोर्ट।
ये प्रदर्शनी नई दिल्ली के राय पिथोरा सांस्कृतिक परिसर में आयोजित की जाएगी। इसमें एक सदी से अधिक समय बाद वापस लाए गए उन अवशेषों को पहली बार एक साथ प्रदर्शित किया जाएगा जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में संरक्षित हैं। वर्ष 1998 में खोजे गए पिपरहवा के अवशेष भगवान बुद्ध से सीधे जुड़े सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण अवशेषों में से हैं। पुरातात्विक साक्ष्य पिपरहवा को प्राचीन कपिल वस्तु से जोड़ते हैं, जो व्यापक रूप से वो स्थान माना जाता है जहां भगवान बुद्ध ने संन्यास लेने से पहले अपना प्रारंभिक जीवन व्यतीत किया था। ये प्रदर्शनी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के साथ भारत के गहरे और निरंतर सभ्यतागत संबंध को प्रदर्शित करेगी। ये पहले भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ऋषु जायसवाल और आदर्श कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
The Indian Institute of Mass Communication, IIMC, has launched its PhD program, marking a historic milestone in the institution's academic journey of 60 years. Under the program, scholars will be selected for admission for the academic year 2025-26. Information and Broadcasting Ministry said that the online admission process for both full-time and part-time candidates will remain open till the 30th of this month. We have more from our correspondent.
The PhD program at IIMC is designed for scholars who wish to explore and contribute to the evolving field of media and communication studies. According to the Ministry of Information and Broadcasting, candidates applying with UGC NET eligibility will be directly called for a personal interaction, while part-time candidates without UGC NET qualification will have to take an entrance exam to be held on 15th of next month. The list of selected candidates will be out on 23rd of February, and interviews will begin from 9th of March this year. The admission process will be completed completed by 27th of March, and the coursework will commence from 1st of April 2026. Speaking at the launch of the PhD admission portal, IIMC Vice Chancellor Dr. Pragya Paliwal Gaur said that the objective of the PhD program is to genuinely contribute towards the research for resurgent India. Dr. Paliwal Gaur emphasized the need for aiming at research projects which are out of the box and help the society and nation at large. With Anand Kumar's report, this is Vishnu P.S., Akashwani News, Delhi.
Prime Minister's flagship platform for proactive governance and timely implementation, Pragati, has marked a significant milestone with the successful conduct of its 50th meeting. Since its launch by Prime Minister Narendra Modi in 2015, Pragati has transformed governance by enabling real-time monitoring and resolution of key infrastructure projects and public grievances through direct prime ministerial review. The platform exemplifies cooperative federalism, bringing together the centre, states and union ministries on a single digital interface. Over a decade, Pragati has helped accelerate decision-making, resolution of issues causing delay in key infrastructure projects, and instilled a strong culture of accountability. It has also emerged as a platform for governance reforms, not merely monitoring. Today, in this special series, we take a look at the Mumbai-Nagpur-Jharsuguda natural gas pipeline.
The Mumbai-Nagpur-Jharsuguda natural gas pipeline is a strategically significant energy infrastructure project conceived to strengthen India's national gas grid. It spans around 1,702 kilometers across Maharashtra, Chhattisgarh, Odisha and Madhya Pradesh. The project was approved at a cost of 8,255 crore rupees under Ministry of Petroleum and Natural Gas. The project faced several challenges, including hindrances in pipeline laying, delays in acquisition of land parcels, and pending wildlife clearance for a 53.7 kilometer stretch passing through a designated tiger corridor. Given the systemic nature of these bottlenecks, the project was reviewed under the Pragati mechanism on 28 June 2023. A marked acceleration was observed following the Pragati review. High-level meetings chaired by the Chief Secretary Maharashtra Government and Ministry of Petroleum and Natural Gas brought all concerned agencies onto a single execution platform. Land acquisition challenges were successfully addressed through active facilitation by Maharashtra government, with acquisition completed in August 2024. A particularly sensitive stretch of the Mumbai-Nagpur-Jharsuguda natural gas pipeline passes through a designated tiger corridor in Maharashtra, spanning the Nagpur, Bhandara and Gondia forest divisions. The necessary forest clearance was secured in December 2024. With legacy bottlenecks resolved, the project advanced rapidly and now stands at around 98% physical progress, with full completion targeted by February this year. All issues reviewed under the Pragati mechanism for the Mumbai-Nagpur-Jharsuguda natural gas pipeline stand fully resolved. It illustrates as to how the Pragati mechanism enables effective delivery of complex, multi-jurisdictional energy infrastructure. By resolving critical land, forest, wildlife and right-of-way issues through time-bound, leadership-driven coordination, Pragati transformed constrained execution into sustained progress. With Anand Kumar, Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को नोटिस जारी किया है कि उससे ग्रोक एआई से अश्लील सामग्री हटाने को कहा है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने अश्लील सामग्री बनाने और साझा करने के लिए ग्रोक एआई के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। एक्स के इंडिया ऑपरेशन के मुख्य अनुपालन अधिकारी को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा कि उपयोगकर्ता ग्रोक एआई सेवा का दुरुपयोग करके फर्जी खाते बनाते रहे हैं और महिलाओं की अश्लील तस्वीरें या वीडियो अपमानजनक या भद्दे तरीके से होस्ट जनरेट प्रकाशित या साझा कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और आईटी नियम 2021 के अंतर्गत नियामक प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि आईटी अधिनियम और आईटी नियम 2021 का अनुपालन अनिवार्य है।
The year 2025 stands as a defining chapter in India's development journey. It saw policies translate into progress and intent into impact. Today, in this special series, Year of Reforms, we bring you India's progress in the finance sector in 2025.
India received strong global recognition for its progress in equality, innovation, technology and global influence in 2025. The World Bank ranked India among the world's most equal societies with a Gini index of 25.5, placing it ahead of China, the United States and all G7 and G20 nations. The International Labour Organization reported that social protection coverage in India rose sharply from 19% in 2015 to 64.3% in 2025. India's digital public infrastructure also gained global praise. The International Monetary Fund recognized the Unified Payments Interface as the world's largest real-time payment system, handling 49% of global transactions. The World Intellectual Property Organization highlighted India's strong growth in intangible asset investment, reflecting a shift toward a knowledge-based economy. Poverty reduction remained a major achievement, with over 17 crore people lifted out of extreme poverty in the last decade. India's cultural and innovation standing also improved, with UNESCO recognitions and a rise to 38th place in the Global Innovation Index. With Nitika, Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
भारत की पुरुष अंडर 19 क्रिकेट टीम तीन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में आज बेनोनी के विलेमूर पार्क में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। 15 जनवरी से शुरू होने वाले आईसीसी अंडर 19 विश्व कप से ठीक पहले यह श्रृंखला दोनों टीमों के लिए तैयारी का एक बेहतरीन मौका है। आयुष महात्रे कलाई की चोट के कारण इस श्रृंखला में नहीं खेल पाएंगे, इसलिए वैभव सूर्यवंशी भारत की कप्तानी करेंगे। और अगर बात करें श्रोताओं हॉकी की, तो हॉकी इंडिया ने सजोर्ड मारिन को भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। श्रोताओं अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद महानगरों की खबरें सुनते हैं सुभद्रा से।
Thank you, Mukesh. Starting with news from Chennai, Union Minister of State for Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan, released the Tamil version of the Government of India calendar Bharat at 2026 in Chennai. Speaking at the function, he said that the calendar serves as a roadmap for reflecting the country's progress, development and future direction of growth with the objective of realizing the goal of Viksit Bharat by 2047. He said that it was for the first time that the Tamil version of the calendar has been officially released in Tamil Nadu. The minister informed that the official calendar has so far been released in over 13 scheduled languages in addition to the Hindi and English, ensuring wider outreach and inclusivity. He said that each month in the calendar focused on the flagship programs of the central government, with focus on infrastructure development and social economic reforms initiated by the government. The CBI has booked city-based rice mill owners and an office bearer on charges of cheating Canara Bank to the tune of 10 crore rupees by availing the credit facilities through forged documents. The anti-corruption branch of Chennai CBI booked three of the alleged fraudsters under Cheating and Prevention of Corruption Act. This also included some bank officials. Going over to Bengaluru, the Bangalore Water Supply and Sewerage Board has invited tenders to supply ultra-pure treated water to the Peenya Industrial Area. Tender has been called to lay a 27 kilometers dedicated HDPE pipeline connecting the Peenya Industrial Area, where the treated water will be filled in a sump-cum-pump house and a 5 lakh liters overhead tank. The Nagasandra Sewage Treatment Plant, with 4 million liters per day capacity, will undergo processing using the state-of-the-art technology that will purify their wastewater to ultra-pure treated water standards before distribution. Driven by the motto of Kaveri River Water for Homes and Ultra-Pure Treated Water for Industries, the board chairman, Dr. Ram Prasad Manohar, has said that they aim to provide an uninterrupted supply of high-grade treated water to Asia's largest industrial hub in Peenya. The primary objective, he added, is to supply treated water at an affordable cost to support the growth and operations of small-scale industries in the region. This can be used for flushing and general cleaning in the industrial estate, thereby saving on use of potable water currently utilized by them. Hyderabad News Now. The Rashtrapati Nilayam in Secunderabad will host the second edition of Udhyan Utsav from today as part of the efforts to promote public engagement and environmental awareness. Udhyan Utsav will be open to public free of cost from 10 a.m. to 8 p.m. daily till the 11th of this month at the main lawns of Rashtrapati Nilayam. Visitors may book their entry online through Rashtrapati Bhavan website or at physical kiosks set up at the Visitor Facilitation Center. Organized by Rashtrapati Nilayam with the support of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and the Manage, the Udyan Utsav 2026 will feature 50 thematic stalls with around 120 exhibitors, providing a platform for agricultural innovation, enterprise and value addition. National Institute of Agriculture Extension Management Manage, Dr. Sagar Hanuman Singh, officials from the Agriculture Department, Rashtrapati Nilayam Manager, Dr. K. Rani Priya, informed the media that the visitors will be able to explore specialized zones like the Green Knowledge Hub, the Millet Mandi and the Startup Hub, the Eco Bazaar, the Plant and Produce Zone. And over to you now, Mukesh, for rest of the news.
Bilkul. अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली शब्दोत्सव का उद्घाटन किया। 4 जनवरी तक चलने वाले इस साहित्यिक और सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया जा रहा है। आइए सुनते हैं शब्दोत्सव पर हमारी संवाददाता नितिका गुप्ता की रिपोर्ट।
दिल्ली सरकार के कला और संस्कृति विभाग तथा सुरुचि प्रकाशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय शब्दोत्सव के पहले दिन काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस कार्यक्रम में देश भर से 100 से अधिक वक्ता के हिस्सा लेने की संभावना है। महोत्सव के दौरान 100 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा 2 बड़े कवि सम्मेलन भी होंगे और अगले 3 दिनों में 40 से अधिक पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पहली बार यह कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है।
एक ऐतिहासिक यात्रा जो भारत ने तय करी वैदिक काल से लेकर के आज के डिजिटल युग तक पहुंचने की, उसका साक्षी आज का ये शब्दोत्सव बनने वाला है। भारत अभ्युदय की थीम पे आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का यहाँ आना भविष्य की और बढ़ते भारत के कदम दिखाता है।
इस अवसर पर दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक चेतना जैसे विषयों पर सार्थक चर्चा होगी।
आने वाले दिनों में भारत की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर, भारत के असली इतिहास के मुद्दे पर, नैरेटिव के बहुत सारे विषयों पर गंभीर चर्चाएं होंगी और यहां तक कि जैन जी की आप यहां पर भागीदारी देख सकते हैं। हजारों युवा यहां पर आया हुआ है। यहां पे भजन क्लबिंग के इवेंट है सांस्कृतिक।
दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि चंद्रावल जल संयंत्र के अंतर्गत आने वाले जलाशयों की वार्षिक फ्लशिंग के चलते कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति आज से सोमवार तक प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में पुरानी सब्जी मंडी, विश्वविद्यालय क्षेत्र, पुलिस लाइन क्षेत्र और इनके आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। जल बोर्ड ने नागरिकों से पानी का संयमित उपयोग करने की अपील की है। इसके अलावा शहरवासी जल आपातकालीन स्थिति में 1916 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली के नांगलोई में जल संग्रहण संयंत्र के मरम्मत कार्य के कारण आज से 12 जनवरी तक जल आपूर्ति कम दबाव या कम समय के लिए उपलब्ध होगी। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार इस कार्य के कारण नांगलोई, पश्चिम विहार, मुंडका और आसपास की कॉलोनियों में जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। बोर्ड ने इस दौरान लोगों से पर्याप्त मात्रा में पानी इकट्ठा रखने को कहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने शहरवासियों से किसी भी आपात स्थिति में 1916 नंबर पर संपर्क करने का आग्रह किया है। दिल्ली पुलिस ने पिछले वर्ष 2025 के दौरान ऑपरेशन मिलाप के तहत साउथ वेस्ट जिले में 1303 लापता लोगों और बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया। पुलिस के अनुसार इनमें 434 नाबालिग और 869 बालिग शामिल हैं। इसके अलावा इस जिले की पुलिस ने पिछले 1 महीने में 100 से अधिक लापता व्यक्तियों और बच्चों को सुरक्षित उनके परिजनों को सौंपा। पुलिस के अनुसार इन मामलों में 35 लापता या अपहृत बच्चे तथा 67 वयस्क शामिल थे। उन्होंने बताया कि लापता लोगों की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय पूछताछ और सार्वजनिक स्थानों पर पहचान अभियान चलाया गया था। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा है कि भारत के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उपलब्धि में देश के शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती है। प्रोफेसर सिंह ने यह कल विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के आगामी शताब्दी समारोह में कहा। उन्होंने कहा कि 100 वर्षों में SRCC ने न केवल उत्कृष्ट अर्थशास्त्री और वाणिज्य विशेषज्ञ तैयार किए हैं, बल्कि ऐसे नीति निर्माता और उद्यमी भी दिए हैं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में प्रभावी योगदान दिया है। कॉलेज की स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी। और अब रुक करते हैं महाराष्ट्र की खबरों का। महाराष्ट्र सरकार ने जिला वार्षिक योजना अनुसूचित जाति उप योजना के तहत पात्र अनुसूचित जाति और नव बौद्ध लाभार्थियों के लिए 1 किलोवाट की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने की मंजूरी दे दी है। इसमें केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 15,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी। राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने कहा कि इस फैसले से उन लाभार्थियों को मदद मिलेगी जो सरकारी योजनाओं के तहत घर होने के बावजूद सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की शुरुआती लागत को वहन नहीं कर सकते। और अब बात करते हैं कोलकाता से जुड़े समाचार की। तो निर्वाचन आयोग ने संबंधित जिला चुनाव अधिकारियों को मतदाता सूची में फर्जी या गैर मौजूद मतदाताओं के नाम अवैध रूप से शामिल करने के आरोपी 5 निलंबित राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सूत्रों के अनुसार बुरुईपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी देवोत्तम दत्ता चौधरी, सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी तथागत मंडल, मोयना विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी विप्लव सरकार, सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी सुदीप्ता दास और डेटा एंट्री ऑपरेटर सुरजीत हल्दर के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। श्रोताओं, आज सवेरे में अब वक्त है महानगरों के मौसम का हाल जानने का। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। तो इधर राजधानी दिल्ली में आज मौसम ठंडा रहने और घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उधर मुंबई में आज मौसम साफ रहने की संभावना है। आज का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और कोलकाता में आज हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और अब हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु के मौसम का हाल सुना रही हैं सुभद्रा।
Chennai is expected to have fog mist in the morning, partly cloudy sky later on. The minimum temperature will be around 23 degrees Celsius, maximum will be around 23 degrees. Bengaluru is expected to have mist in the morning. The minimum temperature is expected to be 18 degrees Celsius. Maximum will be around 28 degrees. Hyderabad is expected to have fog mist in the morning. Partly cloudy sky will be seen later on. The temperature will hover between a minimum of 18 degrees Celsius and a maximum of 28 degrees Celsius. Now let's get to our history section.
Bilkul.
So what's first today for you with you?
आज 1894 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में पौष मेला का उद्घाटन किया था। 1901 में शांति निकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम का शुभारंभ भी आज ही के दिन हुआ था। अगर बात करें साल 1943 की, तो टेलीविजन पर पहली बार गुमशुदा लोगों के बारे में सूचना का प्रसारण कार्य आज ही के दिन शुरू किया गया था। 1968 में देश में पहले मौसम विज्ञान रॉकेट मेनका का प्रक्षेपण भी आज ही के दिन हुआ।
1957 this day, the Leap Singh Son sworn in as the congressional representative of California's 29th district. He was the first Asian, first Indian American, first Sikh to be elected to the United States Congress. And also Alaska became the 49th and largest state of the United States. And 1977 this day, Apple was incorporated by Steve Jobs and Steve Wozniak. It went on to become one of the most recognizable brands in the world. And Mukesh, now let's get to some personalities.
Bilkul. सबसे पहले बात करते हैं आज डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश के बारे में। आज उनकी पुण्यतिथि है। वे प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। धातु विज्ञान में उनके योगदान के लिए उन्हें देश और विदेश में याद किया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए वे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के पहले निदेशक थे। उन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए सन 1961 में पद्मश्री और 1968 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनकी टीम ने वर्ष 1959 में कनाडा भारत रिएक्टर साइरस के लिए ईंधन निर्माण सुविधा की शुरुआत की थी। और आज पुण्यतिथि है एक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक सतीश धवन की। देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे इसरो के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। प्रोफेसर धवन ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कई सकारात्मक बदलाव किए। उन्होंने संस्थान में अपने देश के अलावा विदेशों से भी युवा प्रतिभाओं को शामिल किया गया। उन्हें 1969 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 1981 में पद्म विभूषण, 1999 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
He was called the fifth Beatle. He was the Beatles' arranger. He engineered the sound and production as well. Yes, friends, without Sir George Martin, Beatles would be lost. A fine pianist with a classical bent of mind, Martin brought classical methods and orchestration into pop sounds. Indeed, George produced nearly everything the Beatles made, truly earning himself the title of the fifth Beatle.
Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door.
Stephen Stills of the very famous Crosby, Stills, Nash & Young celebrates his birthday today. This singer-songwriter, multi-instrumentalist, dropped out of college to pursue music and he has been inducted into the Rock and Roll Hall of Fame twice for Buffalo Springfield and CSN, a member of the Songwriter and Hall of Fame too.
श्रोताओं, आज पुण्यतिथि है प्रसिद्ध वायलिन वादक MS गोपाल कृष्णन की। पद्म भूषण तथा अन्य पुरस्कारों से सम्मानित गोपाल कृष्णन ने 7 दशक तक वायलिन के सुरों से हिंदुस्तानी और कर्नाटिक संगीत के प्रेमियों को बांधे रखा। उनको MSG के नाम से जाना जाता था। उन्हें 1975 में पद्मश्री और साल 1982 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर बात करें आज पढ़ने वाली जयंतियों के बारे में, तो आज जयंती है प्रसिद्ध समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की। ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए, सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। विधवा पुनर्विवाह, छुआछूत के खिलाफ आंदोलन और दलित महिलाओं की शिक्षा में उनका अहम योगदान रहा। वे एक कवित्री भी थी।
Yes, as you pointed out, Savitribai Phule was a pioneer of education for women in India. Indeed, she was one of the first lady teachers in our land who opened several schools for girls along with her husband, Jyotirao Phule, and also a part of Society of Truth Seekers, that is Satya Shodhak Samaj, to promote social equality. And Mukesh, we also pay tributes to the first woman freedom fighter from Tamil Nadu, Rani Velu Nachiyar, was born this day in 1730 in Ramanathapuram in the kingdom of Sivaganga, where she ruled for 10 years. She was also the first Indian queen to wage war with the East India Company in India. She's known by Tamils as Veeramangai, that means brave woman.
श्रोताओं, आज जयंती है भारत के हॉकी खिलाड़ी जयपाल सिंह की। वर्ष 1928 से 1956 तक का समय भारतीय हॉकी के लिए स्वर्णिम युग था। डॉक्टर जयपाल सिंह को वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में आयोजित ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था। इस ओलंपिक में भारत ने जयपाल सिंह के नेतृत्व में देश के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया था।
एंड फ्रेंड, द वेरी फेमस इंग्लिश रॉक बैंड लेड ज़ेप्पेलिन्स बेसिस्ट एंड कीबोर्ड विज जॉन पॉल जोन्स सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे टुडे। सून आफ्टर लेड ज़ेप्पेलिन डिसबैंडेड ड्यू टू ड्रमर जॉन बर्नम्स डेथ, जोन्स वेंट सोलो एंड हैड अ वेरी सक्सेसफुल करियर। यू आर लिसनिंग टू अ मैंडोलिन वर्जन ऑफ गोइंग टू कैलिफोर्निया। हियर गोज। And friends, on this day in 1924, legendary British author J.R.R. Tolkien was born. And of course, he's best known for writing The Hobbit and The Lord of the Rings trilogy. His popularity across the globe, especially in Great Britain and South Africa, that's the place of his birth, is commemorated this day, friends. It's called Tolkien's, celebrated internationally with fans going around watching movie adaptations or participating in Tolkien-related events and raising a toast for the professor.
आज जयंती है प्रसिद्ध हिंदी फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक चेतन आनंद की। वे मशहूर अभिनेता देवानंद के बड़े भाई थे। 1950 के दशक में शुरू में उन्होंने अपने छोटे भाई और उस जमाने के मशहूर अभिनेता देवानंद के साथ नवकेतन प्रोडक्शंस के नाम से एक फिल्म कंपनी की स्थापना की। इस बैनर ने बॉलीवुड को अफसर, टैक्सी ड्राइवर और आंधियां जैसी फिल्में दी। बाद में चेतन ने हिमालय फिल्म्स नाम से अपनी अलग कंपनी शुरू की थी। इस बैनर ने हिंदी सिनेमा को हकीकत, हीर रांझा, हंसते जख्म और हिंदुस्तान की कसम जैसी अच्छी फिल्में दी। इसके अलावा काला बाजार, किनारे किनारे, आखिरी खत, कुदरत, हाथों की लकीरें फिल्मों में भी चेतन ने विभिन्न भूमिकाओं को निभाया। उन्होंने वर्ष 88 में परमवीर चक्र नाम से एक धारावाहिक की भी शुरुआत की थी। ये जो गीत अभी बैकग्राउंड में चल रहे थे, क्या गीत हैं ये? अब कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में सुविचार की किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता कि कैसे बोलना है, लेकिन जिस तरह हम बोलते हैं, दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, वही तय करता है कि हम किस क्लास के हैं, किस श्रेणी के हैं। तो आज सवेरे के इस अंक में बस आज इतना ही। आप अगर आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
Thanks for tuning in, friends. Have a superb day. Namaskar.